रानी कहने लगी, महाराज क्या आपको मैं झूठ नजर आती हूँ? नहीं रानी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तेरे पास कोई गवाह कोई सबूत है? तो रानी ने उसी समय बांदी को बुलाकर कहा, बांदी तू बता रात वाली बात, तू तो उस समय आ गई थी, बोल बहन बोल। तो बांदी कहने लगी है, महाराज गजब हो गया, सुनाऊं? हाँ कहो, रात क्या हुआ? तो बांदी कहने लगी है, महाराज 12 बजे रात आ दी गे, अरे 12 बजे रात आ दी गे, रूप कुमार ने बोली दिया, महारानी के कहने से मन महल का फाटक खोल दिया। मैं दिलवाना चाहती हूँ महाराज। राजा कहने लगे, ठीक है ऐसा ही होगा। जल्लादों को बुलाकर राजा ने आदेश दिया कि जिस हालत में रूप को हमारे दरबार में पेश करो। जल्लाद आज रूप कुमार को मारते पीटते हुए दरबार में पेश करते हैं। बेटा हाय हाय चिल्ला रहा है, हाय पिताजी, हाय पिताजी। आज जैसे ही पिताजी को सम्मुख देखा है तो कहा पिताजी को प्रणाम।
सुन कर के प्रणाम को भूख कहीं से आई, ए हट जा पाली आज तू दीना मुख खुदाई कमीने।
अरे प्रणाम करने से पहले तेरी जीभ क्यों ना टूट गई? क्यों रे, माता और मौसी में कोई अंतर होता है? कमीने रूप बोला पिताजी, आज बात क्या है, कारण क्या है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो?
तो राजा क्रोध में आकर कहने लगे, पागल
इस तरह से खड़ा है मानो तुझे कुछ नहीं पता है। तो कहने लगे हैं,
शर्म नहीं आई तुझे ओ पाजी बदकार,
पिताजी। हाँ हाँ, आप ही क्या कह रहे हो? नहीं पिताजी, भला मैं मौसी के साथ अश्लीलता करूँगा? नहीं पिताजी।
राजा ने कहा, जला दो, लगा इसमें कोड़े।
रूप बोला, पिताजी माता के साथ भला आपका रूप ऐसा कर सकता है? मगर बंधुओ,
राजा जला दो दे कहकर
रूप कुमार को पिटवाता रहा। आज रूप कुमार धरती पर गिर पड़ा और रो करके कहने लगा, पिताजी
दादाजी मशगूल हूँ जाने सकल जहान, होती है से मौसी मात समान, मौसी को देखे बद नजर वो बद बड़ा बदकार बोझक रहे तैयार है। हाय प्रभु ये क्या कहो, बाबुल सुनो हमारे ना कुछ भी ऐसा हुआ ये सोचना बेकार है।
पिताजी आपका ये कहना बिल्कुल बेकार है, मगर राजा नहीं माने और उसे पिटवाते रहे। तो रूप कुमार कहने लगा, पिताजी
मैं लगूं पुत्र प्यारो, मैं लगूं पुत्र प्यारो, पिताजी कोई मत मारो, मैं लगूं पुत्र प्यारो।
भाइयों, लेकिन बेटा रुक की किसी प्रकार की बात नहीं सुनी गई। जल्लादों को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया गया। बेटा बोला, पिताजी ठीक है अगर ऐसा है, मगर मेरी एक बात तो सुनो। और कहने लगा रूप,
जल्लादों से तुम कहो मुझको पकड़े
उसी समय महाराज ने हुक्म दे दिया कि जल्लादों रूप भद्रक फांसी दे दी जाए। उसी समय भाइयों, आज जल्लाद लेकर के रूप कुमार को चले हैं। हुआ क्या है?
चले हैं रूप को लेकर के बड़े आगे जाते हैं, मिला तब बसंत भी आगे देखियो भजन सुनाते हैं।
देखा बसंत ने रूप को देखा, आपस में मिले। बसंत ने रूप से कहा, भैया ये क्या? रूप ने सभी संपूर्ण हालत बसंत को बताई और कहने लगा, भैया
बादल बिरन मेरे फट गए, मौसी ने जाहर कर दिया,
मौसी ने पिताजी को बुलाकर संपूर्ण दोष मेरे सिर पर मर दिया। भैया पिताजी ने भी कठोर छाती कर ली, पुत्र प्रेम को त्याग दिया भैया और मुझे फांसी का हुक्म दे दिया। बसंत कहने लगा, नहीं भैया मैं तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगा। भैया तुम मेरे साथ चलो। उसी समय रूप को लेकर के बसंत अपने पिता के पास आता है। कहने लगा पिताजी को प्रणाम। राजा कहने लगे, क्या बसंत? हाँ पिताजी। अरे तू इसे क्या लेकर के आया है? पिताजी, भैया को आप फांसी क्यों दिलवा रहे हो? अरे तू पागल है, अरे तुझे नहीं पता है इसने रात्रि के 12 बजे अपनी मौसी की इज्जत पर हमला बोला, इसलिए हम इसे फांसी लगवा रहे हैं, इसे मर जाने दे। नहीं पिताजी, हमारा रूप ऐसा नहीं है, वो कदाचित ऐसा काम नहीं कर सकता है भैया। हमारा भैया नेक है, ऐसा काम नहीं कर सकता है पिताजी, आप फांसी मत दिलवाओ। मेरे भैया के प्राणों की भीख मुझे दे दो पिताजी। लेकिन राजन नहीं माने, उसी समय कहने लगे नहीं इसे फांसी तो जरूर दिलेगी। तो रूप आज रूप कहने लगे हैं पिताजी नहीं ऐसा मत करो, आज उसी समय कहा है जल्लादों से कि इसकी पिटाई करो, उसी समय पिटाई हो रही है। तो दोनों बच्चे रो करके कहने लगे हैं पिताजी हमें मत मारो, और क्या कह रहे हैं,
पिताजी हम बिन मैया के लाल धर्म
चढ़ूंगा। राजा बोले ले जाओ इन कमीनों को, सूली चढ़ा दो। जल्लाद हथकड़ी लगा दोनों पुत्रों को ले जाते हैं तो धीर से आगे मिल जाता है, बोला ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। बोला जल्लाद ठहर जाइए, रूप बसंत बेटा तुम्हारा ये हाल। हाँ चाचा जी, हमने तुम्हारा कहना न मानकर मौसी के महल के पास गेम खेली, गेंद मौसी के महल में चली गई। मौसी के पास रूप गेंद लेने के लिए गया तो मौसी ने अश्लीलता का दोष लगा दिया। पिताजी इस पर हम दोनों को फांसी लगवा रहे हैं, हमारी रक्षा कर लो चाचा जी। धीर सिंह कहने लगा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुम नहीं माने। तो दोनों बच्चे कहने लगे नहीं चाचा जी हमें बचा लो, और क्या कहने लगे हैं चाचा जी,
छोड़ के हम तेरी नंगरी को, छोड़ के हम तेरी नंगरी को, चल दिया तो ना भैया वापस आवेंगे ना, शकल दिखा देंगे ना हो सारी उमरिया।
Thank you. दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया और राजा के पास ले जाता है। कहने लगा, भैया प्रणाम। भैया, आप रूप और बसंत को फांसी क्यों दिलवा रहे हो? राजा बोले, धीर सिंह, अरे इन्होंने आधी रात के समय पर अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया। अरे ये कमीने हैं, इसलिए इनके लिए ही सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। नहीं भैया, आपने पहले ये कहा था कि अगर ये दोनों बच्चे राज्य में कोई गलत कार्य करेंगे तो सजा तो मैं ही दूंगा, मगर तुम्हें पहले पूछ लूंगा। लेकिन आज तुमने मुझे कुछ नहीं पूछा और अपनी रानी की बात तुमने सही मान ली, लेकिन तुम्हें नहीं पता है भैया, अरे नारी के पीछे दशरथ मर गए, रावण मर गया और कीचक जैसे महारणधीर चले गए। राजा कहने लगा, नहीं, अरे मेरी नारी सती अनसुईया के समान है। अरे धीर से कहने लगा, नहीं भैया, अपनी इस गंदी जवान पर सती का नाम मत लो, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी नारी किसमें से है, बताऊं? और कहने लगा, ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, और ढके तो सब मुल्क को ढक ले पर नानंगी की नहीं है। बोला, भाई, अरे मुझे इन दोनों बच्चों की भीख दे दो। मगर राजा ने फांसी का आदेश दे दिया तो धीर से बोला, भैया अब मैं भी नहीं चुप रह पाऊंगा। और क्या कहने लगा, खून टपके खून बरसे हर सरो दीवार से, खून की नदियां बहादुर तेज और तलवार से। भैया अब मैं चुप नहीं रहूंगा, इन दोनों बच्चों के लिए मैं खून बहादूंगा। और कहने लगा है, धीर से आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत हुकूमत से मुझे काम नहीं, ट्रक में ला होगा पानी का धुआं जम नहीं, और तुझे रुला रुला के न मारा तो धीर से मेरा नाम नहीं। भैया अगर तुम इन बच्चों की भीख मुझे नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारे इस राज्य में नहीं रहूंगा। हाँ जा, अरे मुझे पता है तू राजसी वस्त्रों में बोल रहा है, अरे उतार दे इन कपड़ों को। उसी समय धीर सिंह ने उन कपड़ों को उतार के फेंक दिया और कहने लगा, भैया ये मन समझना धीर सिंह कौन है, आज से धीर सिंह बागी है बागी। बेटा रूप बसंत, तुम सूली पर हंसते हंसते चढ़ जाना बेटा, मैं वहीं पर मिलूंगा। ए भैया तुम भी आना, नहीं कैसे मालूम पड़ेगा कौन आया और कौन ले गया। उसी समय रूप बसंत आज फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर पहुँच गए हैं तो फांसी देने वाले उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। तो जल्लादों ने पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि नहीं, तो कि हम अपने चाचा जी से मिलना चाहते हैं बस। कि बेटा चाचा जी तो तुम्हारे अभी नहीं आए। लेकिन भक्तों, धीर सिंह ने अपना भेद छिपा कर एक खम्भे की ओर में आकर छिप जाता है। रिवाल्वर उसके हाथ में थी लेकिन उन्हें चाचा दिखाई नहीं दिए। तो आज दोनों बच्चे रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं,
अरे बात देख फांसी पे चल गए, चाचा जी नहीं आए, तेरी फिक्र में प्यार खड़े हम ठंड सहन के जाए।
और कहने लगे,
कोई सुनता हो तो यही हो, चचा मर तो के
जल्लाद बोले, ए भाई तैयार हो जाओ। भैया अब देखो मैं गिनती गिनता हूँ और तुम फांसी देना। एक, दो, तीन। ये क्या, अरे आज तलवार नहीं उठती, हाथ क्यों कांप रहे हैं? मालूम होता है इसमें कुछ फितूर है, ये रूप भैया बे कसूर है। भाइयों तभी दूसरा जल्लाद गिनती बोलता है, उसी समय होता क्या है सुनो। एक, दो, तीन। धीर से रिवाल्वर से गोली चला देता है, जल्लाद मर जाते हैं। धीर से दोनों बच्चों से कहता है, राजा की सेना लगी है, चलो बेटे यहाँ से भाग चलो। जब भाग कर के जाते हैं तो झाड़ी मिलती है, नगर को मुड़ कर देख रहे हैं तो बीती बातें याद आती हैं और कहने लगे हैं, चाचा जी
अरे हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए।